जो काम हम लोग अपने लिए इस जिंदगी में करते हैं वो हमारे जाने के साथ गायब हो जाएंगे, लेकिन जो काम हम लोग दूसरों के लिए करते हैं वो हमेशा इस दुनिया में रह जाएंगे, लोगों के दिलों में, लोगों की ज़बानों पर, और ख़ास तौर पे आपकी याद भी इस दुनिया में रह जाएगी जब लोग अपनी दुआओं में आपके लिए दुआएं करेंगे कि फलां बंदा जो था उसने वो कितना अच्छा शख्स था, उसने कितनी मेरी मदद की, उसने मेरा ये मसला हल किया, उसने मेरा वो मसला हल किया, उसने ये काम किया मेरे लिए। तो आज हम सोचते हैं थोड़ा सा इस मौजू पर कि आज के दिन जितने हमने काम किए हैं वो सारे के सारे हम अपने लिए कर रहे हैं। कोई एक काम 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम किसी और के लिए कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो काम जो है वो माली मदद ही हो सकता है किसी को कोई अच्छी बात बताना, किसी की मदद करना, हाथों से कोई किसी के साथ मसला पेश आ गया उस लिहाज से किसी की मदद करना। तो क्या ख्याल है, आज मिलके हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा दिन आज सोचें कि एक या दो काम जो है हम किसी और के लिए भी कर सकें। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुश हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह जिंदगी में आपकी खिदमत में मैं खुर्रम गर्देज़ी हाज़िर हूँ तेहरान स्टूडियो से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जाग चुके होंगे, एनर्जी से भरपूर जो है नई एक खूबसूरत सी सुबह शुरू करने वाले होंगे, और बल्कि कर चुके हैं, यूँ कहूँ तो बेहतर रहेगा। बहरहाल दुआ है मेरी कि आज का आपका दिन जो है वो बहुत खूबसूरतियों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ और अच्छी अच्छी खबरों से भरा हुआ बहरहाल गुजरे इंशाल्लाह जी। इसके अलावा मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारा जो हफ्ते का मौजू चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है, उसका आज आखिरी दिन है, और आखिरी दिन आप लोगों की शमूलियत जो है प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कल जो है बहरहाल उसके ऊपर नतीजे निकालने हैं, और आज के दिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम उस पर जो है आज हफ्ते का जो मौजू होता है उस पर नतीजा निकालते हैं। बहरहाल इस पर भी इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक बहुत अहम जो बात आपके साथ करना चाह रहा था वो ये थी कि देखें, हमने आपको पहले भी बहुत बार कहा है कि आप जिस तरह की रिपोर्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, आपके जहन में भी अगर कोई ख़ास किस्म की रिपोर्ट्स है, आप चाहते हैं कि ईरान से हम लोग वो रिपोर्ट तैयार करके आपको दिखाएँ, आपको किसी ख़ास मौजू में दिलचस्पी है, वो आर्ट्स हो सकता है, घूमना फिरना है, खूबसूरत जगह हैं, या उसके अलावा कुकिंग वगैरह की, कुकिंग वगैरह के बारे में जो है हमारे पास बहुत सी ईमेल्स आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गज़ाएँ, और बहरहाल इंशाल्लाह हम लोग जरूर पूरी कोशिश करेंगे कि ईरानी गजाओं के साथ साथ और जो दूसरी गजाएं हैं उनके बारे में भी आपको उनके जो है सिखाएं, और हम लोग खुद भी सीखेंगे उसमें इंशाल्लाह। जो है वरियानी साहब जो है वो पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, और उनका सेगमेंट जो है वो तकरीबन तैयार है, और वो कुछ ही दिनों में हम इंशाल्लाह आप लोगों के खिदमत में उसको पेश कर देंगे। तो बस फिर जो है बहरहाल आप लोग भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। ये तो बात होगी हमारे नए प्रोग्रामों की। उसके अलावा एक और जो बात, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हमारे प्रोग्राम में आप लोग शामिल नहीं होंगे तो प्रोग्राम बिल्कुल अधूरा पड़ जाता है। हमारे कुछ ख़ास नाज़रीन हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं। अली नादिर साहब हैं, इजाज़ हुसैन साहब हैं, और बहरहाल और भी हमारे बहुत से नाज़रीन हैं, फैसल साहब हैं। बहरहाल हमें इसी तरह जो बात भी आपके जहन में आती है शेयर किया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है जो हम आइटम्स लेके आते हैं, जो हम रिपोर्ट्स वगैरह लेके आते हैं, उससे अहम आप लोगों की बातें हैं, मज़ा उनमें ज़्यादा आता है, बजाय इसके कि हम लोग जो है यहाँ से रिकॉर्ड शुदा चीज़ें जो है आपको दिखाते रहे। बहरहाल ये तो मैंने कहा, ये आपको बता दिया जाए कि आपका प्रोग्राम है, आप लोग जितना इसमें शामिल होंगे उतना बहरहाल मज़ा आएगा। एक और चीज़ जो है बहरहाल मैं पढ़ रहा था, वो ये लिखी हुई थी कि माजी जो है वो गुजर गया, आइंदा जो है, फ्यूचर जो है, आने वाला कल जो है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। भाई अगले एक मिनट का हमें पता नहीं होता, तो अगले दिन के बारे में तो खैर बहुत ही दूर की बात है। तो कहते हैं कि ये जो आज का दिन है, आज जो है ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है। वैसे तो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तोहफे हैं हमारे लिए, लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर हो सकें, अच्छे से अच्छे काम कर सकें, अपनी मुश्किलात को हल कर सकें, सुस्ती को दूर फेंक दें, बुराइयों से बिल्कुल दूर हो जाएं, शैतान से छुटकारा हासिल करें, और अपनी ज़िंदगी बनाएं, अपनी ज़िंदगी जो है वो इस तरह बनाएं कि अच्छे काम करें, और अच्छे काम करने से इंसान के ऊपर ख़ुद एक जो है अच्छे असरात पड़ते हैं, एक मुस्बत एनर्जी मिलती है। आप लोगों को मेरे से ज़्यादा इस चीज़ का तजुर्बा होगा कि जब एक शख्स बुरा काम करता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके आसपास की सारी जगहें जो है वो मनफी और अजीब सी किसी किस्म की कैफियत होती है, और अजीब सी सुस्ती और अजीब सी एक हालत होती है। तो उठें और नहाएं धोएं और नमाज़ पढ़ें, और उसके अलावा जो है अपने कामों पे जाएं और ज़ोर लगाएं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। छोटा सा एक वक्फा लेते हैं और उसमें देखेंगे कैसे आप लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों ने एक बहुत खूबसूरत सी रिपोर्ट कुंभ से देखी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब जो है ज़ियारात कर सकें हर जगह जहाँ पर ऐसी अजीम शख्सियात मौजूद हैं। बहरहाल, मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही सहार उर्दू टीवी की एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं, हमारी एक सीनियर कलीग हैं, एंकर हैं शाइस्ता। तो चलते हैं उनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं आज वो हमारे प्रोग्राम में आ गई हैं और उनसे भी जो हम लोग गुफ्तगू करेंगे। शाइस्ता, मैं सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, बहुत शुक्रिया आपने
हमें टाइम दिया। खुर्रम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में आप सबका खैर मकदम है, सबको खुशामदीद कहते हैं। इंशाल्लाह के एक बड़ी ही अच्छी सुबह का आप सबने आगाज़ कर लिया होगा परवरदिगार आलम के बाबरकत नाम से, नमाज और इबादत व मनाजात से। इंशाल्लाह के मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने हमें बहुत ही बड़ा बना दिया। बहरहाल, हम इतना अपने आप को ना तो एक्सपर्ट समझते ना ही बहुत बड़ा। ये है कि कुछ अरसे पहले आपसे आए हैं, थोड़ा सा बकौल चंद अरसे पहले आने की वजह से ये होता है कि थोड़ा से हमें तजुर्बात में जरा सा थोड़ा सा इजाफा हो गया। बस
इत्तेफाकन यही जो तजुर्बात हैं ये सबसे अहम रोल जो है अदा करते हैं इंसान के कान में और कामयाबी में, और इन्हीं ये जो आप लोगों का तजुर्बा ज्यादा है इसी के लिए जो है हमने आपको आज यहाँ बुलाया है। अच्छा। ताकि थोड़ा सा जो है हमारे नाज़रीन के साथ भी आप लोग बात करें और थोड़ा सा अपने प्रोग्राम और जो हमारा जो जैसे चैनल जो आप लोगों ने इतना उस पर जोर लगाया, इतनी एनर्जी लगाई, इसके बारे में थोड़ा सा जो है हमारे नाज़रीन को भी बताएं। तो देखते हैं कि आज क्या बात करेंगे।
इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और इत्तेफाक से खुर्रम भाई, आपकी इस बात से और ये थोड़ा सा हमारा जो एकदम से अचानक आमद का प्रोग्राम हो गया, इससे हमारे बाज उन नाज़रीन की जो हमें ईमेल किया करते थे कि बज़्म अंजुम के जो मेज़बान हैं उनको भी बुलाया जाए और उनसे भी इंटरव्यू लिया जाए। चलिए, इंटरव्यू तो नहीं, खैर हम यहाँ पर मेज़बान के तौर पर ही आए हैं, लेकिन यह है कि हम अपने प्रोग्रामों के हवाले से बातचीत करना चाहते हैं, उम्मीद और आरज़ुओं के हवाले से बात करना चाहते हैं। इसी तरह से ये होगा कि आज हम उस तरह से मेज़बान नहीं है जैसे हम बज़्म अंजुम या दूसरे प्रोग्रामों में होते हैं। बहरहाल, कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर इस तरह की बातचीत हो जाए जो हमारे भी काम आए और हमारे मोहतरम नाज़रीन के भी काम आए।
बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। अच्छा शायद थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, हमारा जो हफ्ते का मौजू चल रहा है आपको जैसे पता है, औरजू करना, उम्मीद करना, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे पूरे हफ्ते से इस मौजू पे बात चल रही है। एक जो उसमें छोटी सी बात आई थी वो ये थी कि हमारे जो जवान जो नस्ल है हमारी आजकल की लड़कियाँ लड़के हैं, ख्वाब देखते हैं सारे लोग, और मेरे ख्याल में ख्वाब देखने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मसला पता है कहाँ पर आता है, जब वो ख्वाब पूरे नहीं होते ना तो उनको एक बड़ा अजीब किस्म का वो जो एक अंग्रेजी में एक वर्ड कहते हैं सेटबैक, उनको एक धचका सा लगता है और बड़ा परेशान से हो जाते हैं। कुछ लोग तो जी बिल्कुल ही वो शक्लो सूरत उनकी चेंज हो जाती है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख ली, बाल लंबे लंबे रख लिए, वही क्या हुआ जी एंट्री टेस्ट में पास नहीं हो सका, या क्या हुआ जी मसलन वो जॉब नहीं मिली जो चाहिए थी, या पता नहीं वो IBA में दाखिला नहीं मिला। ये ऐसा क्यों हो जाता है, ये वालदैन की उसमें कुताही है कोई, या क्या है क्या आपके ख्याल में?
देखिए, अगर बगौर इस चीज़ का जायज़ा लें, वो अफराद जो जिनका मुताला बड़ा दकीक होता है, मुताले से मुराद सिर्फ किताबों का मुताला नहीं है, मुताले से मुराद इस मुआशरे का मुताला भी है।
सही है।
आपने देखा होगा कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो मुआशरे के अंदर पेश आने वाले मसाइल के ऊपर बिलफर्ज छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं समाजियात पे, मुआशरे में कुछ मसाइल, ऐसी ऐसी बातें और पॉइंट वो लिखते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने कहाँ से नोट कर लिए, हम भी तो इसी माशरे में रह रहे हैं,
हमने
तो कोई नहीं देखा। तो ये वो लोग होते हैं जो बड़ा दकीक मुताला करने वाले लोग होते हैं
जी।
तो आप देखेंगे कि ये लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे मराहल आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस चीज़ में, अफसुर्दगी आप कह लें, या एक तरह से इंसान जब उसको धचका लग जाता है वो टूट जाता है और पीछे हो जाता है। इसमें बहुत सारे, हर इंसान की ज़िंदगी में देखिए ये दुनिया है, हर इंसान के साथ सब कुछ पेश आता है। अगर मैं ये देखती हूँ कि खुर्रम भाई माशाल्लाह से मेडिकल में, मैं भी मेडिकल में जाना चाह रही थी, बिलफर्ज मेरे वो नंबर नहीं आए, मैं मेडिकल में नहीं जा सकी, अब मैं बड़ी आह हसरत से आपको देख रही हूँ, देखो ये लड़का माशाल्लाह डॉक्टर बन गया, मैंने کتنی کوشش کی پڑھائی بھی کی, میں ڈاکٹر نہیں بن سکی. یہ کتنا خوش قسمت ہے, بڑی ہی آئیڈیل لائف گزارا. اور میری زندگی دیکھو بھائی, مجھے آپ کے اندر کی جو زندگی اندرونی حالات ہے اس سے میں بے خبر ہوں, اور خامخواہ اپنے لیے اپنی افسردگیوں پہ اضافہ کیے جا رہی ہوں, یہ غلط ہے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے روایتیں اور حدیثیں بہت ساری پڑھ رکھی ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو جس کا رزق ہے اس کو مل کے رہتا ہے,
ٹھیک ہے, بالکل صحیح,
جس کے حصے میں جو آنا ہے اس کو ملے گا. خداوند عالم عادل ہے, عادل ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ بھی بے انصافی نہیں کرے گا. حتیٰ ہم اگر روڈ کے اوپر کچھ گداگروں کو دیکھتے ہیں, یقین مانیے دل پھٹنے پہ آ جاتا ہے جب 4-5 سال کے بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ شدت کی سردی میں وہ بھیک مانگ رہا ہے, ہم کہیں گے خدایا یہ تو بڑا ظلم اور بے انصافی ہے. میں کار میں جا رہی ہوں جس میں ہیٹر بھی لگا ہوا ہے, اور یہ غریب بچہ نہ اس کے پاؤں میں جوتا ہے اور برباری بھی ہو رہی ہے, یہ کتنا ظلم اور ستم ہے. اگر تو ہمیں پروردگار عالم کے عدل پر یقین ہوگا تو ہم سوچیں گے کہ شاید کچھ مرحلے تک اس کی زندگی میں یہ سختیاں جائیں گی, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آگے کی اس کی زندگی بڑی اچھی ہو, یا جو بعد از مرگ جو زندگی ہے وہ اس کی بہترین ہوگی. یعنی اس کو اس دنیا میں شاید بہت کچھ نہ ملے لیکن آخرت میں اس کو بہت کچھ ملے گا. اس طرح کی جو انسان کے جو اعتقادات ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھیے تھوڑی سے ٹائم کے لیے شاید وہ تھوڑا سا دل شکستہ ہو جائے, لیکن پھر اس کے اندر امید اور آرزو آتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ میں یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ جو پیش آیا ہے میرے ساتھ یہ کسی اور چیز کے لیے ہو.
بالکل,
مجھے ابھی صبر اور شکر کر لینا چاہیے, بعد میں شاید میرے لیے بہتری ہو اس مسئلے میں.
شاید سب بہت بہت شکریہ, بڑی خوبصورت بات ہے, اس بات کو آگے چلائیں گے کہ جتنی مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے اونچا اڑ سکے. بالکل, چلتے ہیں ایک چھوٹا سا یہاں پر وقفہ لیتے ہیں, تھوڑا سا تر و تازہ ہو کے آتے ہیں باہر سے اسٹوڈیو کے, اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے شائستہ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ لوگوں نے ناصر عبداللہی کی آواز میں خوبصورت سا ترانہ سنا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہرحال ہماری بات ہو رہی تھی شائستہ, ایک بڑا اہم نقطہ جو میرے ذہن میں آیا تھا جس کی طرف میں جو ہے اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے شاید ایک شخص جو ہے وہ ابھی اس کے حالات ایسے ہیں, بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے, آخرت کی زندگی اس کی بہتر ہوگی. لیکن اس سے ایک اور اہم بات جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ مشکلات جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہ انسان کی خود لائی ہوئی بھی ہوتی ہیں. اگر ایک شخص, ٹھیک ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ایک شخص آ جاتا ہے کہتا ہے کہ جی میرے والد صاحب جو وہ ان کے پاس کام ہی نہیں تھا, اور ہم لوگ جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھے, 5ویں 6ویں تک پڑھے, اس کو پڑھ نہیں سکے. دوسرا بندہ ہے جی وہ اس کو اس کے بچے جو ہیں وہ بہترین اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہیں, اور اس کے باپ نے جو ہے اس کو فلاں چیز دلائی, اس کو یہ چیز دلائی, وہ وہاں تک پہنچا, یہ سارے ہیں یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن بہت بڑی بڑی شخصیات کو جب ہم دیکھتے ہیں اپنی اس دنیا میں, بہت سے ایسے تھے جو یہی ٹاٹوں کے سکولوں سے پڑھ کے جو ہے اوپر گئے.
بالکل صحیح کہا ہے, چند ایک شخصیات میرے ذہن میں ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی. پشتون ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, بہت بڑی شخصیت ہیں, چونکہ میرے شوہر پشتون ہیں تو وہ اس وقت اپنے جو ان کی مطالعہ وغیرہ ہے پی ایچ ڈی کے سلسلے میں وہ ان شخصیات کا کرتے رہتے ہیں, تو میرے ساتھ بیٹھ کے بحث و گفتگو ہوتی ان میں سے ایک شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں. ان کی اکیڈمک ایجوکیشن صرف 8ویں جماعت تھی, اور ان کو ایک طرح سے پشتونہ کا علامہ اقبال کہتے ہیں.
اچھا صحیح.
اور جو میں نے ان کے بارے میں سنا اپنے ہسبینڈ سے, اور میں بہت سالوں سے سن بھی رہی ہوں, میں حیران رہ گئی. یعنی ان کو دل شکستہ کیا ان کے اپنے ٹیچر نے, جب وہ 4th جماعت میں پڑھتے تھے, 4th میں پڑھتے تھے, سرکاری اسکول میں جاتے تھے, البتہ بہت بڑی ایک مالدار فیملی سے ان کا تعلق تھا لیکن گاؤں میں رہتے تھے. ٹیچر نے اتنا مارا کہ وہ بچہ خوف زدہ ہو کے پھر وہ دوبارہ اسکول نہیں گیا, اسکول بدلا گیا, بہرحال صرف 8ویں جماعت تک پڑھ سکے. لیکن ان کی اپنی محنت اور کوشش جاری رہی ہے مسلسل, وہ مسلسل مطالعہ کرتے رہے ہیں, اور اس مطالعے نے ان کو ایک بہت بڑی شخصیت بنایا کہ وہ ریڈیو کے لیے انہوں نے ابتدا میں پشاور سے ڈرامے لکھنا شروع کیے, پھر پشاور سینٹر کے ٹی وی کے وہ ڈرامے لکھتے رہے, اور پھر بہت بڑی وہ شخصیت بنی. اسی طرح سے آپ انگلستان کے ایک وزیر اعظم بھی گزرے, ان کی بھی اکیڈمک ایجوکیشن میٹرک سے نیچے تھی,
لیکن
وہ خود پڑھتے رہے, محنت کرتے رہے, پھر وزیر اعظم بنے.
شائستہ ہمارے ساتھ جو ہے فون لائن پہ ایرن نقوی صاحب ہیں, کیا خیال ہے, چلتے ہیں,
بالکل چلتے ہیں, سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں.
سلام عرض کرتا ہوں ایرن نقوی صاحبہ, آپ کی خدمت میں.
السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟
سلام, صبح بخیر, کیسی ہیں بہن, آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟
اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟
اللہ کا شکر, ہم بالکل خیریت سے ہیں.
जी इरम नकवी साहिबा, शुक्रिया अदा करता हूँ आपने टाइम दिया। बात हमारी चल रही है आरजू के बारे में, उम्मीद रखने के बारे में, एक हफ्ते से बात कर रहे हैं आपको, आपको आपसे पहले भी बात हुई इस मौजू पर। इरम नकवी साहिबा, कहा जाता है कि सबसे जो अंधेरी रात होती है उसी रात में सबसे ज्यादा सितारे और सबसे खूबसूरत सितारे दिखने को मिलते हैं, नाउम्मीदी फैली हो इंसान के आसपास, ऐसे हालात में कैसे जो है इंसान अपने आप को बाहर निकाले, कैसे जो है वो उम्मीद की किरणों को देखे और जो है अपने आप को जो वो जिस दलदल में फंसा हुआ उससे बाहर निकालने की कोशिश करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे आपकी खुद गुफ्तगू से आपके वो इजहार हो रहा है कि मायूसी जो है गुनाह है,
बिल्कुल,
और खुदा की रहमत से मायूस होना जो है किसी भी हाल में जो है वो सही नहीं है। और जब इस तरह की कोई मुश्किल हालात हो तो उसमें तो बल्कि उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह जैसे ये अंधेरी रात है इसके बाद सुबह होगी, और उसमें जो है जब ये उम्मीद रखेगा तो इंसान कोशिश करेगा खुद ही अपने हालात बेहतर करने की, वरना तो अगर मायूस होगा तो फिर तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा और उसको किसी भी किस्म की यानी कोशिश हिम्मत नहीं रहेगी उसके अंदर कि वो यही जो अपनी अंधेरी रात है इसके लिए कुछ कर सके। तो ये खुदा की रहमत से कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। असल में मोमिन तो आपको पता है वैसे ही खौफ और रजा के बीच में जिंदगी गुजारता है। खौफ इस चीज का कि खुदा ना खास्ता गलत काम उससे अंजाम हो तो वो जहन्नम की तरफ उसको ले जाएगा, और उम्मीद ये कि अगर उससे कोई गलती से कुछ ऐसा कुछ हो जाता है सरजद तो फिर खुदा उसको माफ करने वाला है।
जी
जी
सही। तो अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि ये इसी के सिलसिले में वो ये है कि हम लोग कहते हैं कि उम्मीद जो है उस वो बहुत मजबूती से उसका एक बड़ा एक गहरा ताल्लुक है अल्लाह ताला पे यकीन, हमारा कितना यकीन है। जैसे कि शाइस्ता ने भी कहा कि हमें अगर तो इस बात पे यकीन है कि खुदा आदिल है तो फिर तो हम इस बात को मान। यही बात आ जाती है कि जो लोग मायूस हो जाते हैं क्या आपके ख्याल में उनका ईमान कमजोर है?
बिल्कुल, मायूसी जो है इसमें ईमान की कमजोरी का बहुत बड़ा वो है पहलू है, क्योंकि जब खुदा की रहमत पे खुदा की जो है उस पे उसको उम्मीद ही नहीं होगी तो वो जो है मायूसी की तरफ उसको ले जाएगा, और इसमें उसके वाकई ईमान की कमजोरी है। क्योंकि कभी भी देखे मुश्किल से मुश्किल हालात में इंसान का जब खुदा के ऊपर भरोसा होता है, खुदा पे ईमान उसका मजबूत होता है, तो खुद ब खुद वो रास्ते चाहे कुछ देर लगे लेकिन वो रास्ते उसके लिए आसान होते चले जाते हैं।
सही। इरम नकवी साहब, कहते हैं लंबी आरजुएं नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सुनने में आती है कि जी आरजुएं और उम्मीदें दिल में नहीं होंगी तो इंसान जो है वो जोर ही नहीं लगाता, वो बैठा रहता है।
लंबी आरजुएं तो अब हम क्या, लेकिन ये कि जब इंसान को कल की उम्मीद ही नहीं होगी तो वो जिंदगी में कर क्या सकता है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था जब एक किसान कुछ मेहनत करता है बीज बोता है तो उसको यही उम्मीद होती है कल को उसको महसूल मिलेगा। या बड़ी आरजुएं, इससे मुराद ये कि अगर इंसान ये वो आरजुएं ऐसी हों जिसको हम कहते हैं कि जिनका हासिल करना महाल है फिर भी वो आरजुएं रख रहा है तो वो चीज जो है वो एक उसके लिए कि वो जो है बड़ी आरजुएं रखना जो है सही नहीं है। मगर ना ये कि जो चीजें रोजमर्रा जिंदगी में इंसान को पता है कि उसको कल जाहिर है जो है कल उसको क्या करना है, ये चीज तो इंसान जाहिर उसको उम्मीद दिलाती है कि उसको जो है जिंदगी में बिलाखरे कुछ उम्मीद होगी तो कुछ करेगा।
बिल्कुल सही फरमाए। देखिए यानी ला हासिल आरजू रखना दुरुस्त नहीं है, लेकिन आरजू के बगैर कोई भी इंसान कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये खुद हमें
जो है ना जी मादी अशिया है ना उनकी आरजू करना जो है वो उनमें आता है तुलानी आरजू में मादी, लेकिन ये कि इंसान जब इन चीजों से हटेगा तो फिर जो है मानवी आरजुएं करना तो इंसान को ऊपर लेके जाता है, उसको खुदा के साथ जैसे उसका राबता बढ़ाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सईदा इरम नकवी साहिबा, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद थी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपसे गुफ्तगू रही। और इसी तरह ही जैसे कि हम लोग हमेशा नाज़रीन आपको कहते हैं कि हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हमारे मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो माहिरीन हैं उनको फ़ोन लाइन पर लाएँ, स्टूडियो में लाएँ, और जो आपके जहन में जो सवालात हैं, जो आप बातें सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो हम करते हैं। आप लोग भी जो है हमें फेसबुक के ज़रिए या फ़ोन करके या मैसेज रिकॉर्ड के ज़रिए अपने सवालात और आपका क्या ख्याल है इन मौजूदात के बारे में हमें ज़रूर बताएँ। यहाँ पर चलेंगे, एक वक्फा लेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग फ्रेश भी हो गए होंगे और आप लोगों को भूख भी लग गई होगी।
हाँ, इतने सारे सारे खाने देख कर तो किसको भूख नहीं लगेगी, आपको तो ज़रूर ही लगी होगी, आप तो चाय तक नहीं पी के आए। लेकिन ये जो रोड के किनारे की ये खाने पीने की चीज़ें होती, इनमें थोड़ा सा हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अगर महलूज रखा जाए तो बहुत अच्छी बात।
लेकिन थोड़ा सा सख्त काम है,
सख्त काम तो है जब भूख लगी हो बहुत ज़्यादा।
अच्छा शाहिद साहब, थोड़ा सा जो है आप लोग, आपने काफ़ी अरसे से जो है बड़ा एक अहम प्रोग्राम जो सहार उर्दू टीवी का है उसको आप लोग चला रहे हैं, थोड़ा सा अपने प्रोग्राम बज़्मे अंजुम के बारे में बताएं कि कैसे आप लोगों ने शुरू किया और कैसे चलाया, क्योंकि वो एक मरकजी प्रोग्राम हमारे जो है सहार उर्दू टीवी का है और हर प्रोग्राम, हर जो दूसरा प्रोग्राम है उसके बारे में बात होना
और दखालत बहुत ज्यादा करते हैं, सबकी ईमेलें भी हम लोग पढ़ते हैं, हर प्रोग्राम की आई हुई ईमेल को हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं। एक दफा बल्कि हमारे जो क्लीग्स हैं उनमें से एक जो है वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं आप सबकी ईमेल पढ़ती हैं, मैं सबकी ईमेल पढ़ती हूँ, हर प्रोग्राम की आई हुई ईमेल को हम चेक करते हैं देखते हैं अगर हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं तो अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप लोगों की ईमेल्स भी हम लोग पढ़ते हैं ठीक ठाक आप लोगों की इजाजत से, और कभी कभी शामिल भी करते हैं, अक्सर तो छोड़ देते हैं कि आप लोग ही अपने ईमेल्स को शामिल करें। बहरहाल हमारा प्रोग्राम बज़्मे अंजुम चूंकि ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें सहर चैनल के अंदर नशर होने वाले तमाम प्रोग्रामों के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, तबसरे करते हैं, खुद भी करते हैं और नाज़रीन को भी कॉल करके या वहाँ से जो उनकी टेलीफोन कॉल्स आती हैं उससे हमें यही तवक्को होती है कि हमारे प्रोग्रामों के ऊपर तबसरा करें कि सहर चैनल से नशर होने वाले प्रोग्राम आया उनकी उम्मीदों और तवक्कोआत के ऊपर पूरे उतर रहे हैं कि नहीं, अगर उनमें कोई कमी है तो बताएं। और उन्हीं की वाकई मैं बताऊंगी कि कई हमारे नाज़रीन सऊदी अरब में ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे ड्रेसेस के ऊपर तनकीद की,
अच्छा
हमारे सेट के ऊपर तनकीद की, उसके बाद यकीन मानिए कि बड़ा असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है ये तजावीज़ सुन के देख के, इसलिए कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं कोशिश करते हैं कि उससे हमारे नाज़रीन राज़ी हों, हम अपने नाज़रीन के लिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं। कि फिर हमारे बज़्मे अंजुम में मुख्तलिफ मौजूआत हम लोग रखते थे, रोज़मर्रा के मौजूआत, हत्ता औलाद की तरबियत के ऊपर, तो घराने के अंदर ताल्लुकात एक दूसरे के साथ, तो आपको बताऊँ जो मौजू दुनिया में है, एटमी एनर्जी है, तो अगर तेल का दिन आ रहा है तो हर मुनासिबत और हर मौजू जो इस दुनिया में है थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही सही हम उसके ऊपर बातचीत करते थे।
बहुत शुक्रिया शाइस्ता, इसमें और भी बात करेंगे। हमारे पास जो है हमें बताया जा रहा है कि फोन लाइन पे हमारे कॉलर मौजूद हैं, तो मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम,
प्रोग्राम सुबह जिंदगी में खुश आमदीद, नाम बताएंगे अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं?
बहुत शुक्रिया, मेरा नाम अब्दुल रहीम है, मैं तेहरान से बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से आपके सब नाज़रीन को सलाम अर्ज हो।
बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है हमारे कॉल किया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जी क्या कहना चाहेंगे अब्दुल रहमान साहब, आप प्रोग्राम में हमारा
अब्दुल रहीम साहब
जी
हाँ, जो मौजू है मेरे ख्याल से उसके हवाले से बातचीत करना चाहते हैं, उम्मीद और आरजू के हवाले से, अगर आपके जहन में कोई बात हो हमारे नाजरीन के लिए तो फरमाइए।
जी ये मौजू तो बहुत अच्छा मौजू है और बहुत अहम है, क्योंकि फारसी में कहते हैं ना कि इंसान भी उम्मीद जिंदा, यानी इंसान जो है उम्मीद से जिंदा है, जब तक इंसान की जिंदगी में उम्मीद हो तो वो हरकत में आता है, हरकत करता है, और उम्मीद अगर ना हो तो अलबत्ता उम्मीद जो है वो जितने भी हमारे मजहब है उनमें भी उम्मीद पे बहुत ताकीद की गई है। मसलन इस्लाम में कुरान में आया है कि आप लोग जो है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो बल्कि हमेशा जो है अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहें, यही उम्मीद जो है इसको इस्लाम में रहमत का नाम दिया गया है। और जो है जब तक इंसान के यानी उम्मीद रहेगी तो इंसान जो है ज़िंदगी में कुछ हरकत करेगा, तरक्की करेगा, और जब उम्मीद उसकी उसकी आरजुएं कट जाएंगी तो वो हरकत से बाज रहेगा। अलबत्त उम्मीद जो है इसमें उसके कुछ आफात भी हैं, यानी उम्मीद एक ऐसी चीज है कि उसको अगर इंसान एतदाल में रखेगा तो जिंदगी में कामयाब होगा, और अगर एतदाल में नहीं रखेगा तो वो उम्मीद जो है आरजू और ख्याल परदाजी में बदल जाएगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपनी जो उम्मत है उसमें दो चीजों के लिए मुझे डर है अपनी उम्मत के बारे में, एक जो है दूर दराज जो आरजू है और उम्मीदें हैं, और दूसरी जो है और हवा और हवस परस्ती है।
बिल्कुल,
तो इसका मतलब ये है कि इंसान जब उम्मीद रखता है तो उसको अपनी उम्मीद में जो है एतदाल रखना चाहिए। जी
जी जनाब अब्दुल रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे नाजरीन के लिए की, बहुत शुक्रिया। आपसे जो है इंशाल्लाह दोबारा बात भी करेंगे हम लोग।
बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब्दुल रहीम साहब ने एक बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया है, उम्मीद और आरजू तो हर इंसान रखेगा, जब कोई उम्मीद ही नहीं होगी, आरजू ही नहीं होगी, तो वो कैसे अच्छी जिंदगी गुजार सकेगा, कैसे वो जोश और वलवले के साथ जिंदगी गुजार सकेगा। हत्ता वो जब नमाज पढ़ेगा उसमें भी उसको कोई मजा नहीं आएगा, लज्जत ही महसूस नहीं होगी। लेकिन जब ममानियत की गई है तो वो हिर्स और तमा की ममानियत की गई है। एक शख्स है वो सुबह से शाम तक काम करता है, खुर्रम भाई, ठीक है, उसकी उम्मीद और आरज़ू और तवक्को ये होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए काम करता है, चाहे वो बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए करता है, चाहे वो अपनी औलाद के लिए करता है कि औलाद पढ़ेगी लिखेगी और कल को वो इस मुआशरे और मजहब के लिए एक मुफीद फर्द साबित होंगे। लेकिन जब हिर्स और तमा आ जाए उसके काम में, वो जो सुबह से गया है तो रात को लौटेगा, उसको पता ही नहीं पीछे से जो बाल बच्चा है उसका, फैमिली बच्चा है, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे, उसकी जगह खाली रहेगी घर में, तो हिर्स और तमा नहीं उसको करना है। लेकिन जितनी उसको मेहनत शक्कत करनी करनी वो चाहिए, वो वाजिब है हर मर्द के ऊपर और हर औरत के ऊपर।
बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। यहाँ पर हम लोग चलना है एहसान ख्वाजा अमीरी की आवाज में, एक तराना सुनेंगे, उसके बाद आप खिदमत में हाजिर होंगे हमारे साथ। जी खुश आमदीद कहता हूँ आपको नाज़रीन प्रोग्राम में, और आपने एक खूबसूरत सा तराना सुना, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बहरहाल वक्त हुआ यहाँ पर कुछ जो है बातें आपको साथ मैं अकेला यहाँ पर करूँ, उसमें एक जो बहुत अहम मौजू मैं आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ वो ये है कि कैसे जो है आप लोग अपने ऊपर यकीन कर सकते हैं, ये यकीन कि मैं हर काम कर सकता हूँ। हर काम से मुराद ये है कि जो काम आपके सामने पेश आता है, जो मुश्किल आपके लिए पेश आती है, वो सारी उन मुश्किलात को आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जो आपने हमेशा जहन में रखनी है कि अपने पर यकीन करना, सेल्फ बिलीव जो है वो एक सीखने वाली चीज़ है। ऐसा शायद हो सकता है एक शख्स के अंदर जो है कुदरती तौर पर ये चीज़ मौजूद हो, लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आप ये कहते हैं कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या ये नहीं कर सकता, मेरा जो है बदन कमज़ोर है या मेरा इतना आईक्यू नहीं है, तो इस बात को आपको बाहर निकालना है। और इसी सिलसिले में माफ़ कीजिएगा, सबसे पहला जो कदम आपने उठाना है वो ये कदम है कि आपने जो आपके अंदर से कभी कभार इंसान के जहन में बातें आती हैं कि जी ये काम जो है मैं नहीं कर सकता या ये इम्तिहान जो है बड़ा सख्त इम्तिहान है, इस सिलसिले में जो भी आपके जहन में बातें आती हैं उसको आपने बाहर निकालना है, उसके साथ डील करना है। ये जो नेगेटिव मनफी इनर्जी इंसान के दिल के अंदर, इंसान के जहन के अंदर होती है, ये सबसे ज़्यादा काम जो है ख़राब करना इसी का ही होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि भाई मैं तो ये काम जो मैं मुझे 5 साल पहले लगता था कि मैं बिल्कुल ये काम नहीं कर सकता, आज मैं ये काम कर पा रहा हूँ। और जो है बहरहाल इस तरह की बिल्कुल बहरहाल जो है मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात इंसान की ज़िंदगी में आते हैं और इंसान को आहिस्ता आहिस्ता फिर पता चलता जाता है कि हर जो मसलन जो चीज़ आपको दिखने में सख्त लग रही है वो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहें तो आप उस काम को कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कहा जाता है कि इंसान की शख्सियत में कुछ कमज़ोरियां होती हैं, तो एक बड़ा एक मशहूर जुमला है, कहा जाता है कि अपनी कमज़ोरियों को अपनी मजबूतियों में, अपनी ताकत में तब्दील कर दें। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसको आपने हमेशा जहन में रखना है। और एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि आप हमेशा जहन में ये रखें कि आप भी दुनिया के एक हीरो बन सकते हैं। कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है मसलन आप जो सारे इंसान जो हैं वो एक जैसे हैं, एक जो है आप कहते हैं कि जी एक मुल्क में जाता है और वहाँ मसलन एक जो है अपने मुल्क में प्रेसिडेंट बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है या किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाता है, तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है। तो इसमें ये कि भाई ये कहना कि नहीं वो ख़ास है और मैं नहीं कर सकता, तो हमेशा अपने जहन में ये चीज़ लाएँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बता पता, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से अलावा भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जिस लेवल पे आप पहुँच सकते हैं। तो हमेशा आप जहन में ये चीज़ रखें कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और आखिरी नुक्ता इसमें मैं ये बताऊँगा कि कभी भी दूसरे लोगों की जो बातें हैं, अगर आपके कोई दोस्त यार हैं, आसपास के लोग हैं, उनको उनकी बातें सुने, लेकिन उनकी बातों पे इतनी अहमियत ना दें कि आपका जो अपना आपका शेड्यूल है, आपका अपना जो प्रोग्राम है वो ख़राब हो जाए। आप दूसरों की बातें सुने, लेकिन कहा जाता है कि वो जो कामयाब तरीन शख्स वो है जो अपने आप को खुद कोच करता है, अपने आप को खुद बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लोगों की बातें सुनता है, लेकिन सुनने की हद तक ठीक है, कोई अच्छी अगर उसके बाद में उसमें कोई नसीहत मिल जाती है तो उस पर अमल करता है, लेकिन बाकी जो काम आपने करना है आपने खुद अपना कोच बनना है। जैसे कि कोच जो है वो अपनी टीम को बता रहा था क्या करना है, तो आपने अपना खुद कोच बनना है। यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। पपीते के बारे में तो फ़ारहाल हम सारे हमारे नाज़रीन को मालूम होगा, उसके बारे में कुछ उसकी खूबियां हैं जो मैं आपकी खिदमत में आज सुबह सवेरे बताऊंगा। उसमें सबसे पहले एक चीज़ है, जिन लोगों के जो जिल्द के मसाइल जिनको पेश आते हैं, दाने वगैरह हैं, उनके लिए कहते हैं पपीता बहुत अच्छा है। दिल में माफ़ कीजिएगा, पेट में जिनको मड़ोड़ पड़ते हैं, दर्द होता है, ख़ास तौर पे कहा जाता है कि जो नाश्ते के बाद जिन लोगों को पेट में मड़ोड़ पड़ते हैं उनके लिए जो है कहा जाता है कि पपीता का जूस जो है वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कब्ज़ वगैरह की परेशानी है उनके लिए भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, इसको इस्तेमाल करते रहें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं उनको ये कहा जाता है कि सुबह सवेरे उठ के वो एक गिलास अगर पपीते का पिए तो उनको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्त दवाइयाँ अपनी खाते रहें, लेकिन ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर आप बाकायदगी के साथ हर रोज सुबह एक गिलास जो है पपीता का जूस पिए तो उससे आपको हाई ब्लड प्रेशर की मुश्किलात जो है ख़त्म हो जाएंगी। जिन लोगों को एस्थमा वगैरह की मुश्किलात हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि वो भी जो है पपीते का इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक जो चीज़ यहाँ और लिखी हुई, वो ये लिखी हुई है कि जिनको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है और गले के मुश्किलात या टॉन्सल्स जो है जिनके जो उसमें वर्म आ जाता है, सूज जाते हैं, उनके लिए भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। विटामिन ए और विटामिन सी से सरशार है। बहरहाल आप इसका जूस जो है आज मेरे ख्याल में जो है अपने नाश्ते में इस्तेमाल करें, और मैं जो है चलता हूँ शाइस्ता के पास।
बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी प्यारी आपने मालूमात दी पपीते के बारे में। पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो पपीता ऐसी चीज़ है कि अक्सर घरों में इसके दरख्त लगे होते हैं, और ये जो कहा है ना कि मसलन आपको दवा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये उन अफराद के लिए जिनको आमतौर पर उनका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक हद में नहीं गया हुआ है, तो वो पपीते का इस्तेमाल अगर अभी से शुरू कर दें तो वो इंशाल्लाह उस स्टेज पर नहीं पहुँचेंगे जहाँ पर हतमन उनको सिर्फ दवाइयाँ ही लेनी चाहिए।
बिल्कुल सही बात की शाइस्ता आपने। और शाइस्ता हमारा जो आहिस्ता सब प्रोग्राम है वो तकरीबन एक मिनट हमारे पास रह गया है प्रोग्राम के ख़त्म होने में। बहरहाल हम लोग यहाँ पर ये है कि दुआ करेंगे अपने नाज़रीन के साथ मिलके कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग रिस्क हलाल कमा सकें और आज के दिन जो है भरपूर एनर्जी से अच्छे अच्छे काम कर सकें। मुझे मैं सिर्फ ये बताते चलूँ कि हमारी जो कल की मेहमान हैं हमारे साथ होंगी डॉक्टर हुसैन हैं, और वो जो है हमारे साथ इंशाल्लाह जो है न्यूट्रिशन जो तगज़िया हमारे जो गज़ाइयात का जो मौजू है इंशाल्लाह उस पर जो है हमारे साथ बात करेंगे।
अल्लाह के हमारे नाज़रीन इन पॉइंट्स को नोट करते रहेंगे जो कुछ यहाँ पर बयान किया जाता है।
शाइस्ता प्रोग्राम के आखिर में अगर आप हमारे नाज़रीन को कोई वो आखिरी जुमलात जो होते हैं वो अगर
आखिरी जुमलात सिर्फ यही है कि उम्मीद और तवक्को पे दुनिया कायम है। अगर इंसान उम्मीद नहीं रखेगा तो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ बैठेगा, और जाहिर है कि यही चीज़ उसकी तबाही का बाइस बनेगी। और खुदा को अपने साथ रखे, अपने दिल में रखे और उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारे।
बिल्कुल, बहरहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और शाइस्ता को प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी से आपके अपने प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज़।